أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان سے متعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے اپنے گزشتہ خطبے کے حوالے سے ایک تصحیح کرنی چاہتا ہوں. میں نے 3 اپریل کے خطبہ میں اپنی اہلیہ آصفہ بیگم کی تاریخ پیدائش 21 جنوری 1936 بیان کی تھی اور حوالہ یہ دیا تھا کہ ان کے پہلے پاسپورٹ میں یہ تاریخ درج ہے. میں نے جا کر دیکھا تو واقعتاً پاسپورٹ پر یہی تاریخ درج ہے, لیکن پاسپورٹ پر اندراج میں غلطی ہوئی ہے, کیونکہ اب مجھے چھوٹی آپا حضرت سید ام متین نے پرانے الفضل دیکھ کر وہاں سے حوالہ بھیجا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سن بھی اس میں غلط درج تھا اور تاریخ بھی. ان کی پیدائش 1935 کو 21 جنوری کو نہیں بلکہ 16 جنوری بروز بدھ ہوئی تھی, اور 15 اور 16 کی درمیانی رات کو, یعنی 16 کی تاریخ شروع ہو چکی تھی. اسی طرح تاریخ شادی میں بھی غلطی ہو گئی تھی. مجھے یاد نہیں تھا, میں نے کہا تھا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن غالباً 17 ہے. وہ بھی حضرت چھوٹی آپا نے وہاں سے الفاظ دیکھ کر بتایا ہے کہ 8 تاریخ کو ربوہ سے لاہور کے لیے برات روانہ ہوئی تھی حضرت صاحب زیادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ برات گئی تھی. حضرت دوسرے موت بوجہ بیماری خود شرکت بھی فرما سکے تھے, اور 9 دسمبر کو لاہور میں پیر کے روز شادی ہوئی اور اسی روز وہاں سے پھر واپسی ہوئی. بس یہ 2 تاریخیں درست کرنے والی تھیں. معمولی باتیں ہیں, لیکن چونکہ یہ خطبات تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں اس لیے ان میں غلطی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کی تصحیح ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے. جو آیات کریمہ میں نے آج تلاوت کی ہیں یہ انہی آیات میں سے لی گئی ہیں یا انہی کا حصہ ہیں جو پہلے بھی کی جا چکی ہیں. پہلے پورا رکوع تقریباً میں نے تلاوت کیا تھا. پہلی آیت واقف الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل اگرچہ زیر بحث لائی جا چکی ہے لیکن آج دوبارہ اس آیت سے تلاوت اس لیے شروع کی کہ مجھے جمعے کے بعد یہ بتایا گیا کہ زلفن کی بجائے میں زلفن پڑھ گیا تھا. اس لیے جہاں تک اس تصحیح کا تعلق ہے وہ تو کیسٹ میں کر دی گئی تھی اور جماعتوں کو مطلع بھی کر دیا گیا تھا. آج اس بات کو دہرانے کا مقصد اور ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے اس سلسلے میں مزید تحقیق کی. قرآن کریم میں یہ لفظ جس طرح سے مستعمل ہوا ہے ان جگہوں کو دیکھا اور لغت کے حوالے سے مزید غور کیا کہ زلفن اور زلفن میں کیا فرق ہے. قرآن کریم میں زلفا لفظ مثلا یہ کی کھڑی زبر کے ساتھ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ اس کا معنی قرب ہے. اور زلفن لفظ کی جب لغت کا میں نے جائزہ لیا مستند کتب سے تو ایک ایسا امر سامنے آیا جو ایک بہت قیمتی چھپا ہوا موتی تھا جس کا اس آیت کے ضمن میں بیان ہونا جسے اس آیت کے ضمن میں بیان ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نظر سے اوجھل ہو گیا. اور میں نے سوچا کہ بعض غلطیوں سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سی برکتیں نکال دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حکمتیں بہت باریک ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے اس کی لغوی مختصر لغوی بحث رکھتا ہوں. اس لفظ کا مصدر جو قرآن کریم کی اس آیت میں استعمال ہوا ہے زلفن اس کا مصدر ہے زلفن و زلفن و زلیفن. یہ 3 مصادر آتے ہیں اور ان مصادر میں کہیں بھی فے کلمہ یعنی زے پر ضمہ یعنی پیش نہیں ہے. زلفن و زلفن و زلیفن اور زلفن کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوا مصدر میں. لیکن اس مصدر سے ایک اور اشتقاق ہوا ہے یعنی مشتق اس سے نکلا ہوا ایک اور لفظ ہے وہ ہے الزلفتو زلف. اور اس آیت کریمہ میں جو زلفن لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی زلفا سے لیا گیا ہے. اسی سے آگے پھر زلفن بنتا ہے. جو بات قابل ذکر تھی وہ یہ تھی کہ میں اس مضمون کے متعلق یہ رجحان رکھتا تھا کہ اس آیت میں لفظ زلفن صرف رات کے ٹکڑے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ قرب الہی کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. کیونکہ لفظ زلفا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس میں قرب کے معنی ہیں اور رات کے معنی نہیں ہیں. زے لام فے یہ کھڑی الف زلفا جو لفظ ہے اس میں قرب کے معنی ہیں اور رات کے معنی نہیں ہیں. اسی طرح اور مصادر میں بھی قرب کے معنی ہیں اور رات کے معنی نہیں. مثلا یہی جو مصدر ہے اصل زلفن و زلفن و زلیفن اس میں قربت اور کسی سے دوستی چاہنا اس کے قریب ہو جانا یہ معنی تو ہے مگر رات کے معنی نہیں. لیکن اس سے جو مشتق ہوا ہے زلفتن اس میں خدا تعالیٰ کا یہ عجیب تصرف ہے کہ رات کے معنی بھی ہیں اور قربت کے معنی بھی ہیں اور یہ دونوں معنی وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں. بس فصاحت قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا یہ کرشمہ ہے کہ ان تمام لفظوں میں سے وہ لفظ پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس میں محض رات کے ٹکڑے کے نہیں बल्कि खुदा ताला के करीब होने के माने भी पाए जाते हैं। और ये मजमून वैसे ही है जैसे फतहज्जद बही नाफिला तल्लक असा यबसक रब्बो का मकाम महमूदा में बयान हुआ है कि रात को उठकर अगर तुम नवाफिल पढ़ोगे और तहज्जुद पढ़ोगे तो ये एक बहुत ही आला दर्जा की नेकी है जिसके नतीजे में खुदा ताला की तरफ से तुम्हें प्यार अता होगा और मकाम महमूद अता होगा। बस इस आयत के अब ये माने बनेंगे, वाकिम सलाता तरफ़ीन नहारे, नमाज को कायम करो, इबादत किया करो दिन के दोनों किनारों के वक्त, यानी सुबह भी सूरज निकलने के बाद दिन के पहले हिस्से में भी और सूरज गुरूब होने से पहले दिन के आखिरी हिस्से में भी। वज़ुल्फ़म मिन अल-लैल, और रात के किसी हिस्से में भी, लेकिन ज़ुल्फ़म मिन अल-लैल में किसी हिस्से से ज्यादा माने पाए जाते हैं क्योंकि ज़ुल्फ़म का मतलब रात का वो हिस्सा भी है जो दिन के साथ लगा हुआ हो, और दोनों तरफ ज़ुल्फ़म का लफ्ज इतलाक पाता है। तो मुराद ये है कि दिन के दोनों किनारों पर भी अभी दिन हो तो नमाज पढ़ा करो, इबादत किया करो, और रात के दोनों किनारों पर भी यानी उन किनारों पर जो दिन से मिलते हैं इबादत किया करो। वज़ुल्फ़म का आजाद अलग माना यह होगा और रात के किसी हिस्से में उठकर अलग इबादत भी किया करो। तो पांचों वक्त की सारी नमाजें और उनके औकात इस आयत करीमा में बयान हो गए। और ज़ुल्फ़म में ये मजीद माने हमें मिले कि अगर तुम रात को उठकर खुदा की इबादत करोगे तो तुम्हें क़ुर्ब इलाही अता होगा, ऐसा क़ुर्ब इलाही जो आम नमाजों से बढ़कर है, और ये नमाज तुम्हें अपने रब के करीब तर कर देगी। बस इस मजीद इजाफी तशरीह के साथ अब मैं अगली आयत की तरफ मुतवज्जे होता हूं क्योंकि इस आयत करीमा के दूसरे पहलुओं पर गुज़श्ता खुतबे में गुफ्तगू हो चुकी है। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, सब्र से काम ले क्योंकि अल्लाह ताला मुहसिनीन का अजर जाया नहीं फरमाता। मुहसिनीन कौन लोग हैं, इसका एक ताल्लुक नमाज से भी है, और चूंकि नमाज की बात हो रही है इसलिए सबसे पहले नमाज से ताल्लुक वाले माने बयान होने चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहसिन की यह तारीफ फरमाई कि जो इबादत इस तरह करे कि गोया वो खुदा को देख रहा है, और अगर वो ऐसी इबादत के मकाम पर फायज नहीं हो सक अभी नहीं हुआ, उसे ये मर्तबा हासिल नहीं हुआ कि इस तरह अल्लाह की इबादत करे गोया सामने खुदा को खड़ा देख रहा हो, तो कम से कम इतना तो करे कि ये एहसास बेदार रखे कि खुदा उसे देख रहा है, और सारी इबादत के वक्त उसके जहन पर यह तसव्वुर मुस्तौली हो, ये तारी हो बात कि मैं खुदा के हजूर खड़ा हूं और वो मुझे देख रहा है। ये मोहसिन है जो ऐसी नमाज अदा करता है। तो इस आयत करीमा में पहले फरमाया वस्बिर, फिर फरमाया इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोहसिनीन, यकीनन अल्लाह ताला मोहसिनीन का अजर जाया नहीं किया करता। सब्र का जहां तक ताल्लुक है इसके मुख्तलिफ मानी हां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। आम गम की हालत में जो इंसान खुदा की खातिर बर्दाश्त करता है और हौसला नहीं छोड़ता, इसे भी सब्र कहा जाता है, लेकिन नेकियों के साथ चिमट जाने को भी सब्र कहा जाता है। मजबूती से नेकी पर हाथ डालना और उस पर कायम हो जाना, इसे सब्र कहते हैं। सब्र का इस मजमून से क्या ताल्लुक है, मैं पहले यह बयान करूं फिर अगली बात दोबारा शुरू करूंगा, यानी मोहसिनीन से ताल्लुक में। नेकी के दो किनारे हैं, एक वो जब इस इंसान नेकी में दाखिल होता है, उस वक्त नेकी पर इंसान को दवाम हासिल नहीं हो जाता, बल्कि नेकी को इख्तियार करने में कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है। नेकी अकल के लिहाज से तो अच्छी लगती है, लेकिन आदत और मिजाज के लिहाज से मुश्किल मालूम होती है, और जहां भी मुश्किल और तकलीफ का मजमून होगा वहीं सब्र का मजमून होगा। बस सब्र की इसलिए जरूरत पड़ती है कि एक शख्स अगर नई नई नमाज शुरू करे, नया नया सच बोलना शुरू करे, नया नया लेन देन में मामला साफ रखने की कोशिश करे, तो शुरू में उसे बहुत दिक्कत पेश आती है। नमाज के लिए उठना और उस पर कायम होना भी मुश्किल, सच बोलना भी मुश्किल, और मामलात साफ करना भी मुश्किल। गर्जी के हर नेकी में ये एक लाजिमा है कि नेकी की इब्तिदा में इंसान दिक्कत महसूस करता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का यह माना किया कि नेकी से चिमट जाए, किसी हालत में उसे छोड़े नहीं। और जब नेकी इससे आगे तरक्की कर जाती है तो फिर वो एहसान में दाखिल हो जाती है। हर नेकी इंसान को एहसान की तरफ लेके जाती है, और उस वक्त नेकी में एक लुत्फ पैदा हो जाता है। मोहसिन का मतलब है अपने फेल को ज्यादा खूबसूरत बनाने वाला, एक ये माना भी है। बस इबादत के लिहाज से मोहसिन का मतलब है वो शख्स जो इबादत करते वक्त गोया खुदा को देख रहा हो और आमने सामने उससे गुफ्तगु कर रहा हो। और दूसरा माना यह है, ये नहीं तो कम से कम हाजिर बाश रहे, ये ख्याल हमेशा उससे दामनगीर रहे कि मैं सबसे आला अजल हस्ती के सामने खड़ा हूं, और उस हुजूरी के जो तकाजे हैं, जो अदब और एहतराम इस एहसास के नतीजे में पैदा होता है, वो उसकी इबादत, उसकी हरकत और सकनात में पैदा हो जाए। दूसरा मोहसिन का मतलब है किसी चीज को खूबसूरत बनाने वाला, पहले से बेहतर कर देने वाला, किसी चीज में हुस्न दाखिल करने वाला। बस वो लोग जो नेकी को सब्र से पकड़ के बैठ रहते हैं, या बैठ रहने की बजाय यूं कहें कि सब्र से उस पर कायम हो जाते हैं, उनकी नेकी फिर हसीन हो जाती है, उसमें दिलकशी पैदा हो जाती है। और वो नेकी महज जबर से नहीं करते बल्कि उसकी मोहब्बत में करते हैं। नेकी के साथ एक लुत्फ वाबस्ता होता है जो इब्तिदा में हासिल नहीं हुआ करता, कुछ अरसे के तजर्बे के बाद उसमें से वो हुस्न फूटता है और नेकी से मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो मोहसिन की तारीफ फिर ये हुई सब्र के बाद कि वो लोग जो नेकियां इख्तियार करते हैं और सब्र से मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कोशिश के साथ, बावजूद इसके कि दिल मायल ना हो, उस नेकी को मजबूती से पकड़ लेते हैं और किसी हालत में फिर उसको छोड़ते नहीं। रफ्ता रफ्ता उनकी नेकियों में एक से एक हुस्न फूटता है, उसमें एक नूर पैदा होता है, इन नेकियों में एक नूर पैदा हो जाता है और एक दिलकशी पैदा होती है। बस वो नेकियों से जबर के साथ नहीं बल्कि मोहब्बत के नतीजे में ताल्लुक रखने लग जाते हैं, और वो नेकियां मुस्तकिल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं बगैर किसी कोशिश और बगैर जिद्दोजहद के। ऐसी हालत में जब नमाज दाखिल हो तो फिर वो मोहसिनीन की नमाज बनती है। ऐसी हालत में उन्हें दीदार नसीब होता है, और हुस्न के दीदार से ज्यादा और किसी चीज में लज्जत नहीं। बस इसके माने ये होंगे कि सब्र के साथ नमाज अदा करने वाले, अगरचे आगाज में उनको नमाज के मजे ना भी आते हों, वो इस यकीन के साथ कि ये अच्छी चीज है उसे चिमटे रहते हैं, फिर नमाज में से एक हुस्न फूटता है, उसके नतीजे में फिर खुदा ताला का दीदार नसीब होता है, और वो कैफियत पैदा होती है जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि वो खुदा को अपने सामने देखने लग जाते हैं। और असल नमाज की लज्जत इसी में है, और उससे पहले का मर्तबा यह है कि खुदा के सामने खड़ा हुआ अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला मर्तबा को पहले बयान फरमाया कि यह मकसूद होना चाहिए, और बीच की मंजिल को बाद में बयान फरमाया जिसमें से हर मौसम जरूर गुजरता है। बस जब नमाजें जाग उठती हैं और उनमें रोशनी पैदा होती है तो पहले उनके अंदर एक हुस्न, अपनी जाती हुस्न पैदा होता है, फिर खुदा ताला के कुर्ब का एहसास नुमाया हो जाता है और नमाज के हर हिस्से पर गालिब आ जाता है। उस कुर्ब से फिर दीदारे इलाही फूटता है और नमाजी को अपना महबूब खुदा अपने सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। सजदा करता है तो महसूस होता है कि खुदा के कदमों में सजदा कर रहा है, और ये वो नमाज की लज्जत है जिसके मुतालिक फरमाया कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह याद रखो अल्लाह एहसान करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता। बस जो लोग दावत अल्लाह इस तरीक पर करें जिस तरीक पर कुरान करीम ने बयान फरमाया है और इबादत और नेकियों के साथ ऐसा ताल्लुक कायम करें जैसा कि इस आयत करीमा में मजकूर है, तो बिल आखिर वो जरूर कामयाब होंगे। और सब्र के माना ये भी है कि अपने नेक अंजाम पर यकीन रखें। अगर ये यकीन ना हो तो सब्र हो ही आ ही नहीं सकता। हकीकी सब्र उसी को नसीब होता है जो खुदा पर ईमान लाता है और आखिरत पर ईमान लाता है, क्योंकि आखिरत अच्छे अंजाम की खबर देती है। कितनी ही तकलीफों में से दुनिया में कोई गुजर रहा हो या उसका कोई करीबी गुजर रहा हो, जब ये कामिल यकीन दिल में जागजीन हो कि बिल आखिर इन तकलीफों से सिर्फ छुटकारा ही नसीब नहीं होना बल्कि इससे बहुत बेहतर हालत अता होगी, जो दुनिया की सब तकलीफों के मुकाबले पर इतनी अजीम शान नेमत होगी कि सब तकलीफें भूल जाएंगी, तो उसके नतीजे में सब्र अता होता है। सब्र का यकीन से एक बहुत गहरा ताल्लुक है। तो फरमाया कि नमाज को जब पकड़ो या नेकियों को पकड़ो तो दिल में ये कामिल यकीन होना चाहिए कि बिल आखिर ये नेकियां या ये बातें तुम्हें नेक अंजाम तक पहुंचाएंगी, और अगर तुम ऐसा करोगे तो याद रखो खुदा ताला भी ऐसा ही सलूक तुमसे फरमाएगा। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला हरगिज कभी भी एहसान करने वालों के अजर को जाया नहीं फरमाया करता। फिर फरमाया फलौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन यनहौना अनिल फसाद फिल अर्द इल्ला क़लील मिम्मन अंजैना मिनहुम। ऐ काश ऐसा होता, ऐसा क्यों ना हुआ, फलौला मिनल कुरून काना मिनल कुरून, कि पुरानी बस्तियों में से, पुराने लोगों में से, पुरानी कौमों में से जो तुमसे पहले गुजर गई, ऐसे अकल वाले लोग क्यों ना पैदा हुए जो फसाद से रोकते और जमीन को फसाद से पाक करने की कोशिश करते। इल्ला कलील मिम्मन अंजैना मिनहुम, हां चंद ऐसे लोग थे जो मुस्तस्ना थे, पहले लोगों में से भी वैसे थे जिनको खुदा ताला ने तौफीक बख्शी कि वो फसाद को दूर करने की कोशिश करते रहे, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको निजात बख्श दी। व तबा लदीन जलमू मा उतरफूफी है व कानू मुजरमीन, लेकिन वो लोग जिन्होंने जुल्म की राह तैयार की उन्होंने किस चीज की पैरवी की, फरमाया व तबा मा उतरफूफी है, उन लोगों ने उन आसाइशों की पैरवी की जो खुदा ताला ने उनको अता की थी, या लफ्ज मजमून यूं नहीं है कि खुदा ताला ने अदा की थी, मां उतरे फूफी है जो उनको मयसर आई, जो उनको दी गई थी, यानी नेमत की जिंदगी, आसाइश की जिंदगी, ऐशो इशरत की जिंदगी, इन चीजों को उन्होंने तरजीह दी। वकानू मुजरमीन, और वो मुजरिम बन गए या मुजरिम थे। इस आयत में जो तदरीज बयान हुई है उससे मालूम होता है कि मुजरिम बनना उनका जलमू के नतीजे में हुआ, और जलमू की तशरीह फरमाई कि वो आसाइशों के परिस्तार हो गए, आसाइशों की पैरवी करने वाले हो गए, दुनिया की लज्जतों के लिए वक्फ हो गए। इससे पहले यही लफ्ज़ ज़लम गुजरा है कि उन आयात में जो मैं पहले तिलावत कर चुका हूं, फरमाया वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, उन लोगों की तरफ हरगिज ना झुको, उनकी तरफ तुम्हारा कोई मैलान ना हो जो जालिम हुए। अब इस आयत में जुल्म की तशरीह फरमा दी है कि हमने जो तुम्हें खबरदार किया है कि जालिमों के करीब भी ना होना, उनकी तरफ झुकना नहीं, तो हम तुम्हें बताते हैं कि यहां इस मजमून में जुल्म से क्या मुराद है। इस मजमून के ताल्लुक में अल्लाह ताला फरमाता है जुल्म से मुराद है कि इंसान दुनिया की लज्जतों में खोया जाए और उनकी पैरवी को अपना मकसूद और मतलूब बना बैठे, दुनिया की लज्जतें और आसाइशें उसका मकसूद और किबला बन जाएं। ऐसे लोग जिनका ये किबला बन जाती हैं, फरमाया उनकी तरफ कोई मैलान नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो याद रखो जालिम लोग ऐसा किया करते हैं, और जब जालिम ऐसा करते हैं तो खुदा के हजूर मुजरिम के तौर पर हाजिर होते हैं, और उनके साथ जो सुलूक होता है या होगा उसके मुतालिक आगे फिर तफसील से बयान फरमाया गया है। इसमें जमात अहमदिया के लिए बहुत ही गहरी नसीहत है जो इस जमाने में आजकल की जिम्मेदारियों को अदा करने में बहुत काम देने वाली है। हजरत मुस्लिम माऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कुल आलम में तबलीग का मंसूबा बनाया तो उसके साथ तहरीक जदीद का ऐलान किया, और तहरीक जदीद सिर्फ माली कुर्बानी का नाम नहीं जिसके नतीजे में सारी दुनिया में तबलीग होनी थी, बल्कि तहरीक जदीद उस प्रोग्राम का नाम है जिसके नतीजे में अहमदियों को यह तलकीन की गई कि अमदन आसाइशों से रूगर्दानी करो और दुनिया की लज्जतों में गर्क ना हो, जहां तक मुमकिन है तौफीक है सादा जिंदगी इख्तियार करो और ऐशो इशरत की दुनिया को छोड़ दो और अपनी तमाम तर तवज्जोहात खिदमत दीन की तरफ मायल कर दो। तो ला तरकनू में जो कुरान करीम ने नसीहत फरमाई है वो है जालिमों की तरफ ना झुको। हजरत मुस्लिम माऊद का जो प्रोग्राम था वो मोहसिनीन की तरफ झुकने का प्रोग्राम था, और इस आयत का जो मुस्बित नतीजा निकलता है उसी का वो प्रोग्राम था कि ये ना करो तो फिर क्या करो। फरमाया मोहसिनीन की तरफ झुको, और उसके मुतालिक एक तफसीली प्रोग्राम दिया गया। आजकल जो मगरबी मुआशरा है उसके मुतालिक कहा जाता है कि ये दुनिया की लज्जतों की तरफ बुलाने वाला मुआशरा है, लेकिन अमरे वाकया यह है कि इस पहलू से अब मगरिब और मशरिक में कोई तमीज नहीं रही। पाकिस्तान में भी उसी तरह के ये मादा परस्ती के इब्तला हैं जैसे मगरिब में हैं, हिंदुस्तान में भी वैसे हैं जैसे मगरिब के दूसरे ममालिक में हैं, चीन और जापान और दूसरे एशियाई मुल्क जिस तरफ भी आप नजर डालें सब में यही बला कौमों को खाती हुई दिखाई देगी कि दुनिया की लज्जतें और उनका ततब्बो और उनकी तरफ दौड़ना और पागलों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी के तलबगार हो जाना और उसी के लिए वक्फ हो जाना, ये आज कौमी रुझानात का खुलासा है। खा मगरिब की दुनिया हो या मशरिक की दुनिया हो, इस पहलू से सब बराबर हो चुके हैं, और यही वो बड़ी मुसीबत है जिसके नतीजे में जमात अहमदिया की रफ्तार पर नहायत ही मुझे असर पड़ सकता है। जमात अहमदिया खा मगरबी मुआशरे में नबर्द आजमा हो या मशरिकी मुआशरे में नबर्द आजमा हो यानी जहाद में मसरूफ हो, जमात का वो हिस्सा जो तनाव की जिंदगी को अपना किबला बना लेता है, सोसाइटी की तरफ दौड़ता है और सोसाइटी की रंगीनियों को दीन की सादगी पर फौकियत देता है और तरजीह देता है, वो हिस्सा अमलन जमात से कटना शुरू हो जाता है और नेक कामों में वो मुमिन और मददगार रहने की अहलियत नहीं रखता। दिल में अगर नेकियां हैं भी तो जिनका किबला दुनिया हो जाए, जिनकी जिंदगी का मकसूद ऐशो तरब हो, उनके लिए नेक काम करने की सलाहियत बाकी नहीं रहती। और दो तरह के नुकसान होते हैं। अव्वल ये कि सारी जमात सारे दुनिया में जहाज में मसरूफ है और कहीं दावत अल्लाह के प्रोग्राम बयान किए जा रहे हैं, कहीं खिदमत खल्क के प्रोग्राम बयान किए जा रहे हों, कहीं दुनिया के बड़े बड़े अजीम ममालिक को फतह करने के मंसूबे पेश किए जा रहे हों। वहां ये हिस्सा जिसका दुनिया की तरफ रुझान हो जाता है, अव्वल तो ऐसे मौके पर हाजिर ही नहीं होता जहां ये नेक नसीहतें की जाती है। जुमों से दूर हो जाते हैं, ये जमात की मजालिस से दूर हो जाते हैं, इनकी औलादें खुदामुल अहमदिया और अतफालुल अहमदिया और इनकी बच्चियां लजनात से रफ्ता रफ्ता किनारा कश होने लग जाती हैं और इनमें और जमात के नेक कामों में फासले पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और उसका बिल आखिर ये नुकसान पहुंचता है कि सिर्फ इनका हाल ही हाथ से नहीं जाता, इनकी आइंदा नस्लें हाथ से निकल जाती हैं और ऐसे लोगों के बच्चे फिर अपने वालदैन के मुकाबले पर जमात से बहुत ज्यादा दूर हट जाते हैं, क्योंकि वालदैन ने कम से कम नेक लोगों की गोद में परवरिश पाई होती है। ऐसी नस्लें जो मेरे पेश नजर हैं उनमें अक्सर वो बड़े लोग हैं जिनके आबा अजदाद सहाबा या सहाबा नहीं भी थे तो बुजुर्ग ताबईन थे और बहुत ही पाकीजा लोग थे, नेक खुल्क और नेक अमल करने वाले, और उनको मिलकर ही इंसान के दिल में एक नेकी की बशाशत पैदा होती थी। ऐसे लोगों को इन्होंने अपने घरों में चलते फिरते देखा हुआ है। वो अब मौजूद ना भी रहे हों तो उनकी नेकी का ये असर जरूर उनके दिलों में जागजीन हो चुका है कि अहमदियत सच्ची है और अहमदियत के नतीजे में खुदा मिलता है। लेकिन दुनियादारी के हिर्स और ऐशो तरब की लालच ने अहमदियत से ताल्लुक कमजोर कर दिया, लेकिन ईमान अभी बहरहाल मौजूद है। जिन बच्चों ने बेचारों ने ये कमजोर हुए मां बाप देखे और इनके आबाओजदाद नहीं देखे, उनके दिल पर वो असर भी बाकी नहीं रहा जो इस पहली नस्ल के दिल पर बाकी था। ईमान में भी कमजोरी आ गई, अपने मां बाप को अगर उन्होंने दुनिया की ऐशो इशरत में और उस ऐशो इशरत की तलाश में सरगर्दां देखा है और दुनिया की लज्जतों की तरफ दौड़ता हुआ देखा है तो उससे उनको ईमान का तो कोई पैगाम नहीं मिला। अहमदियत की सच्चाई का जो पैगाम मिला है वो एक लफ्जी सा पैगाम है और नेक असर के नतीजे में उनके दिलों पर जागजी नहीं हुआ, नक्श नहीं बना। इस लिहाज से ये वो लोग हैं जो अपने आइंदा नस्लों को भी तबाह कर जाते हैं और वो नस्लें फिर और दूर हट जाती हैं। शुरू में अहमदियत के नाम की शर्म रहती है, फिर वो खानदान हटते हटते जब अल्लाह ताला उन्हें अमीरी के इब्तला में इब्तला के जरिए आजमाए तो फिर वो बेचारे बदनसीब बिल्कुल ही जमात से ताल्लुक तोड़ बैठते हैं। ऐसी बहुत सी नस्लें हैं जिनका मुख्तलिफ वक्तों में मुझे जायजा लेने का भी मौका मिला और अदाद शुमार इकट्ठे करने का भी मौका मिला। मुख्तलिफ वजूहात से ऐसा हुआ, लेकिन एक बड़ा इब्तला दुनिया परस्ती का इब्तला था जिसने जमात के बहुत से खानदानों को रफ्ता रफ्ता जमात से काट दिया। और अगर रहे भी जमात में तो एक नीम जान किसी हालत में, ना जिंदों में ना मुर्दों में, और आइंदा नस्लें उनकी फिर बिल्कुल खत्म हो गई। तो जो मौजूदा नस्ल है जो अल्लाह के फजल से इस वक्त इखलास में तरक्की कर रही है, और मैंने अपने तजुर्बे से देखा है कि जब तक मुझे खुदा ताला ने जमात से राबते की तौफीक, जहां तक भी राबते की तौफीक बख्शी है, मैं खुदा के फजल से यह गवाही दे सकता हूं कि जमात अहमदिया के छोटे बड़े मर्द और औरतें सभी रफ्ता रफ्ता दीन में तरक्की कर रहे हैं और उनकी जमात अहमदिया और उसके मकासद से मोहब्बत बढ़ती जा रही है और ताल्लुक मजबूत हो रहा है।
बहुत से ऐसे नौजवान भी थे और बड़े भी जो किनारों तक पहुंचे हुए थे, वो रफ्ता रफ्ता वापस आ रहे हैं और एक नया वलवला पैदा हो रहा है और अल्लाह ताला ने नई सदी के सर पर आपको रखने की ये जजा दी है कि अपनी तरफ से आपके कदम मजबूत कर दिए हैं और आपको खुदा ताला घेर कर वापस जमात के दिल की तरफ लेके आ रहा है ताकि आप आइंदा दुनिया के लिए दिल बन जाएं और मरकजी किरदार अदा करें और आने वाली नस्लों के लिए उसी तरह नमूना बने जिस तरह हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वक्त की नस्ल आज तक हमारे लिए नमूना है और नमूना बनी हमेशा बनी रहेगी। बस ये वो मजमून है जिसे मैं अच्छी तरह ज़हन नशीन करवाना चाहता हूं कि आपको मशरिक में हो या मगरिब में, जैसा कि कुरान करीम ने नसीहत फरमाई है, दुनिया की लज्जतों से इस हद तक लाजिमन रूगर्दानी हो करनी होगी कि आपका दिल गवाही दे कि आप एक सरसरी इसी नजर से इनसे इन बातों से ताल्लुक रखते हैं, इनके हो नहीं गए। वरना खुदा ताला ने दुनिया में जो नेमतें पैदा की हैं वो मोमिन के लिए हैं, इससे कोई शक नहीं कि हर नेमत जो पाक हो वो मोमिन के लिए है, उससे किनारा कशी करने की तालीम नहीं है। नेमतों की तरफ रुझान को दुरुस्त किया गया है, ये फरमाया गया है कि तुम्हारा किबला और मकसूद दुनिया की नेमतें न बन जाएं, वरना कुरान करीम फरमाता है कि ये नेमतें तो हमने मोमिनों के लिए पैदा की हैं, इस दुनिया में भी और आखिरी दुनिया में तो खालिसतन मोमिनों के लिए होंगी। पर जहां तक नेमतों का ताल्लुक है उनसे इस्तेफादा करना मना नहीं, लेकिन ऐशो तरफ यानी नेमतों का गलत इस्तेमाल और फिर नेमतों की तरफ गलत रुझान, यहां तक कि वो जिंदगी का मकसूद बन जाएं और उसके बगैर इंसान समझे कि मेरी सारी उम्र जाया गई, ये बातें गलत हैं। इस जिद्दोजहद को आसान करने के लिए अल्लाह ताला ने वो तालीम फरमाई कि सब्र करो और याद रखो कि अगर तुम मोहसिन बन जाओगे तो तुम्हारा कोई अमल जाया नहीं जाएगा। पर सब्र के एक और माने भी इस सूरत हाल पर इतलाक पा रहे हैं कि दुनिया तलबी से रूगरदानी के वक्त भी कुछ सब्र करना पड़ता है और जब आप उस मजबूती से उस सब्र पर कायम हो जाएंगे तो उस सब्र से भी एक हुस्न फूटेगा। मुआशरती लिहाज से वो हुस्न क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया की जो लज्जतें मसलन मगरिब में हम देख रहे हैं, वो खानदान अहमदी हों गैर अहमदी हों, मुसलमान गैर मुस्लिम, ईसाई गैर ईसाई, दैरिया, सारे खानदान इस पहलू से यकजाई सूरत में मेरे पेश नजर हैं। जो लोग दुनिया तलबी के पीछे पड़ जाते हैं उनकी जिंदगी से सुकून उठ जाता है, उनके घरों से अमन उठ जाता है, उनके यहां किसी चीज की कोई की हिफाजत की कोई जमानत नहीं रहती, मुआशरा दिन ब दिन दुखों में मुबतला होता चला जाता है और एक ऐसा मौका आता है कि ना बेटी बाप की है, ना बाप बेटी का, ना बेटा मां का है, ना मां बेटे की, बहन भाई से जुदा हो जाता है और उस घर में इस तरह इकट्ठे रहते हैं जैसे कुछ जानवर इत्तेफाकन एक जगह इकट्ठे कर दिए गए हों। उनकी मईशत इकट्ठी हो गई है और कुछ अरसे के लिए सिर्फ, और जब जरा बड़े हुए तो फिर जिस तरह कबूतर चोंचे मार के अपने छोटे बच्चों को जब वो जरा सा अलग होने की सलाहियत इख्तियार कर लेते हैं घोंसले से बाहर निकाल देता है, इसी तरह आजकल की मगरबी दुनिया में बहुत सी जगह बच्चों से यह सलूक होता है। जर्मनी में खसूसियत से बाज जर्मन अहमदियों ने मेरे सामने बाज वाकयात बयान किए, मुझे तो यकीन नहीं आता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा तो रोजमर्रा की बात है। बेटा बड़ा हुआ उसके बाद वो अपने घर में अपने रहने का बिल अदा करना शुरू कर देता है और इसी तरह अगर बाप उसके पास आके ठहरे बाद में तो बाप अपना बिल देगा उसको। वो जो आला कदरें हैं एक खानदान की और एक दूसरे के लिए इशार और कुर्बानी की और एक दूसरे की जिम्मेदारियों की, वो सारी कदरें फिस्सा पारीना बन चुकी हैं, माजी की बात हो चुकी है और नतीजा यह है कि फिर एक दूसरे के साथ सख्ती है, एक दूसरे के साथ एहसान का तो क्या सवाल, अदल भी बाकी नहीं रहता। कई मुस्तस्ना भी हैं, ऐसे खानदान भी मैं खुद जानता हूं इंग्लिस्तान में भी, जर्मनी में भी, दूसरे ममालिक में भी, जिनमें बहुत कुर्ब है और एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले हैं। सारी कौम एक सी नहीं, लेकिन रुझान वही है जो मैं बता रहा हूं, और ये बढ़ता हुआ रुझान है और एक ऐसा खतरनाक रुझान है, जब से ये कायम हुआ है आगे ही बढ़ा है, पीछे नहीं हटा। बस इस पहलू से जमात अहमदिया के वो खानदान जो मगरिब में जिंदगी बसर करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। शुरू में उनको सब्र करना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी, अपनी बीवियों को भी, बच्चियों को भी समझाना होगा कि इस मुआशरे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है, वक्ती आर्जी लज्जतें हैं, इनसे किनारा कशी करो, और इसमें सब्र है, और इसके लिए लाजमन कुछ अरसा सब्र से काम लेना पड़ता है। फिर इसके नतीजे में जो घर का पाकीजा मोहब्बत और प्यार का माहौल पैदा होता है वो हुस्न है जो सब्र के नतीजे में पैदा होता है, और जिन घरों में ये हुस्न हो उनकी बाहर की तरफ नजर ही नहीं रहती, वो घर खुद कशिश का मुझे बन जाते हैं, और हर वो शख्स जो उन घरों से वाबस्ता होता है बाहर से घबराकर जल्द से जल्द घर लौटने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अपने बाप से, अपनी मां से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने अजीजों से जो प्यार मिलता है और जो अपनायत होती है, जो यकीन है कि ये हमारे हैं और हम उनके हैं, उसके नतीजे में एक ऐसा खूबसूरत सुकून नसीब होता है कि उसकी मिसाल बाहर की दुनिया में कम पाई जाती है, और वो लोग जो दुनिया की लज्जतों की पैरवी करने वाले हैं उनको पता ही नहीं कि ये लज्जत क्या चीज है। बस उसके नतीजे में फिर ये लोग रफ्ता रफ्ता मोहसिन बन जाते हैं। अपने माशरे का हुस्न दूसरों को देने लग जाते हैं। वो लोग जो इनके घरों में आते हैं वो इन घरों की लज्जत को देखकर महसूस भी करते हैं, और उनके दिलों में हसरतें उठती हैं, काश हमें भी ऐसे पाकीजा घर नसीब होते। उनसे वो दोस्तियां करते हैं, उनसे ताल्लुक बढ़ाते हैं, और अल्लाह ताला के फजल से ऐसे नमूने देखकर कई इनमें से फिर इस्लाम और इस्लाम की सच्ची तशरी यानी हकीकी इस्लाम अहमदियत को कबूल कर लेते हैं। एक बच्ची की मैंने मिसाल दी थी, उसने पिछले रमजान के से एक पहले एक दो रोज पहले बैत की थी, उसे जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि ये जो अहमदी बच्चियां हैं और इनके घर का माहौल, ये मुझे ऐसा पुरकशिश लगता था, ऐसा प्यारा लगता था कि उसके नतीजे में लाजिमन मुझे इस मजहब की तहकीक करनी पड़ी, और जब मैंने तहकीक की तो मुझे दिल से ये मजहब प्यारा लगने लगा। तो मोहसिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो किसी हुस्न को इख्तियार कर ले, फरमाया मोहसिन बनोगे सब्र के नतीजे में, और जब मोहसिन बनोगे तो वो हुस्न जो तुम्हें सब्र ने बख्शा है वो तुम दूसरों को बांटने लग जाओगे, मोती बन जाओगे, तुम्हारा फैज दुनिया को पहुंचेगा, और इस तरह ये हुस्न फैलता चला जाएगा। ला युदीउ अजरुल मोहसिनीन का एक ये मतलब भी है कि वो इसके फल अपनी आंखों के सामने देखेंगे, उनके एहसान की जिंदगी जाया नहीं जाएगी, बल्कि इस जिंदगी को इस दुनिया पर गालिब देखेंगे और कामयाब देखेंगे, और जान लेंगे कि इसमें एक ताकत है और इसी तर्ज जिंदगी ने बिलाखिर दुनिया पर गालिब आना है। बस इन मानों में जमात को सब्र पर कायम होना चाहिए, और जहां तक मशरकी दुनिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, जो हालात हम जानते हैं, हम इल्म है कि नई नस्लें बहुत तेजी के साथ उन सारी बुराइयों का शिकार हो रही हैं जिनमें से अक्सर का आगाज अमेरिका में होता है, वहां वो बीमारियां पैदा होती हैं और फिर सारी दुनिया में बरामद की जाती हैं, और बहुत तेजी के साथ अमीर भी और गरीब भी, नशों के मरीज, गुनाह के हर तरीक पर मुंह मारने में एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले, सच और झूठ की तमीज उठ चुकी है, हलाल और हराम कमाई की तमीज उठ चुकी है, इंसाफ और जुल्म के दरमियान कोई तफरीक नहीं रही, हर पहलू से हमारा मुआशरा इतना ज्यादा दागदार और गंदा हो चुका है और इस कदर जख्मी हो चुका है
कि हाँ वो इस इन दुखों को महसूस करें न करें, देखने वाले जानते हैं कि ये जख्म दरअसल मौत की तरफ ले जाने वाले जख्म हैं। ऐसे जख्म हैं जो उनमें से बहुत से हैं नासूर बन चुके हैं, ऐसे हैं जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और इनसे बचना मुश्किल दिखाई देता है। बस इन लोगों की इसलाह के लिए जमात अहमदिया को कायम फरमाया गया है। अगर उन हथियारों से लैस हो जाएं जिन हथियारों का कुरान करीम ने यहां जिक्र फरमाया है, तो फिर जिद्दोजहद का आगाज होगा। और वो आगाज कैसे होगा? फरमाया फलौला काना मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बकियतें यनहौना अनिल फसाद फिल अर्ज़। काश तुमसे पहली कौमों को ये अकल आ गई होती, ये वो बात समझ जाते कि जब चारों तरफ मुआशरा बीमार हो चुका हो और दिन ब दिन मौत की तरफ आगे बढ़ रहा हो, तो उनको बचाने वाले, हलाकत के घरों से वापस बुलाने वाले, ऐसी आवाज देने वाले होने चाहिए जो बार बार उनको मुतनब्बे करें और कहें कि तुम हलाकत की तरफ जा रहे हो, वापस आओ। उन आवाज देने वालों की सिफात क्या है वो पहले बयान हो चुकी है। वो सब्र करने वाले हैं, वो एहसान करने वाले हैं, एहसान के हर मानों में वो एहसान करने वाले हैं। वो लोग हैं जो खुदा की इबादत करते हैं और उनकी इबादतें जिंदा हो जाती हैं, उनकी रातें रोशन हो जाती हैं और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक बांध लेते हैं और खुदा उनका किबला बन जाता है। ऐसा किबला जो किबले की तरफ कहीं नहीं बल्कि सामने आ खड़ा होता है। अगर उसे देख नहीं सकते तो वो उसे देख रहा होता है। ये वो लोग हैं जिनको कुरान करीम ने उलू बकियतन फरमाया है। साहिब अकल लोग ये हैं और ये लोग लाजिमन फिर मुआशरे को नेकी की तालीम देते हैं। ये खामोश रह नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता कि इन मरातिब को हासिल कर चुके हों और मुआशरे से बेनियाज और बेपरवाह हो जाएं। लाजिमन वो खुदा की तरफ बुलाने वाले बनते हैं और खुदा की तरफ बुलाने के लिए पहला कदम है बदियों से रोकना, बुराइयों से मुआशरे को पाक करने की कोशिश करना। फरमाया अगर वो फसाद फिल अर्ज से लोगों को रोकते, सिवाय उन थोड़े से लोगों को जिन पर अल्लाह ने एहसान फरमाया, तो कौमें उस बदअंजाम को ना पहुंचती। अब ये वो एक ऐसी आयत है जो हमारे और हमारे दुश्मन मौलवियों में नुमाया तफरीक और तमीज करने वाली आयत है। वो दीन की मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन बुराइयों के खिलाफ कोई जहाद नहीं करते। उनका अगर जहाद है तो घूम फिर कर बिल आखिर अहमदियों पर जुल्म करना उनके जहाद का नाम है। और कुरान करीम फरमाता है कि जहाद जुल्म के खिलाफ होना चाहिए ना कि जुल्म के जरिए। तो क्या उनकी सच्चाई है, क्या उनमें हकीकत है? वो अहमदी जो बाज दफा इन लोगों के चक्कर में आके कमजोरी दिखाते हैं, मैं उनकी अकल पर हैरान होता हूं कि इतनी खुली खुली तमीज अल्लाह ताला ने दिखा दी है, ऐसा वाज़े फर्क कर दिया है कि गोया अहमदियत को फुरकान अता फरमा दिया है, और फिर भी बाज लोग कहते हैं कि ये सच्चे हैं कि वो सच्चे हैं। कुरान करीम की इन आयात की कसौटी पर उनको परख कर देखें, किसी में अगर मामूली सी भी अकल हो तो उसे दूर का भी ये वहमा नहीं होगा कि अहमदियत का मुआनिद मुल्ला सच्चा हो सकता है। उसकी सारी जिंदगी जुल्म की तालीम देने पर वक्फ हो चुकी है और वो जुल्म जो खुदा ताला जिसको खुदा ताला जुल्म करार देता है, दुनिया की ऐश परस्ती और उसकी लज्जतों में खो जाना, उसके नतीजे में बनी नौ इंसान से नाइंसाफी का सलूक करना, माशरे की में हर किस्म की बदी का पैदा हो जाना, इस जुल्म के खिलाफ उनकी उनके तमाम एहसास यूं हैं गोया मर चुके हैं। मैंने पहले भी एक दफा पाकिस्तान के उलमा को नसीहतन ये बात कही थी, अगरचे मैं जानता हूं कि वो नसीहत को सुनने वाले नहीं, मगर खा कुछ सुने या ना सुने नसीहत करना तो हमारा फर्ज है और कुरान करीम की आयत तकाजा करती है कि नसीहत करो। मैंने उनसे कहा कि कुछ देर के लिए तुम अहमदीत का पीछा छोड़ो और इस्लाम को बचाने की कोशिश करो। गली गली में, घर घर में इस्लाम मर रहा है, इस्लामी अखदार मर रही है। हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा को नुकसान पहुंच रहा है और इस्लामी मुआशरे से ये सुन्नत गायब हो रही है। इस पर तुम्हारा दिल क्यों नहीं रोता? इस पर तुम्हारी जान क्यों नहीं निकलती? इस पर तुम्हारी रातों की नींद क्यों हराम नहीं हो जाती? तुम उठो और ये अजीम जहाद करो मुल्क की गली गली, शहर शहर, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती में, और मुसलमानों को जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर मंसूब होने का दावा करते हैं उनको बताओ और दिखाओ कि वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से कितना दूर जा चुके हैं और कितना दूर होते चले जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के किसी शहर में नमूनतन 1,000, 1,500, 2,000 आदमी मुंतखब करें और आहुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा की कसौटी पर उनको परखने की कोशिश करें, वो परखने की कोशिश ही गुस्ताखी रसूल मालूम होगी। यानी वो लोग जो मिसाल के तौर पर सिंध में डाके डाल रहे हैं और अगवा कर रहे हैं और जिस तरह गली गली में जुल्म और सफाकी से काम लिया जा रहा है, बेहयाई आम हो रही है, जिंदगी का मकसद गंदे गाने सुनना ही है, इसके सिवा कुछ रहा ही नहीं बाकी, या गंदी फिल्में मुयस्सर आ जाएं तो ऐशो इशरत की इंतहा हो जाती है, हर किस्म की बुराइयों की पैरवी हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, रिश्वत ली जा रही है, इन लोगों में से नमूने चुने और अगर कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लम के उस्वा की कसौटी पर परखो, तो जिसको आहू से मोहब्बत है उसको इस पर बेइंतहा गैरत महसूस होगी, वो कहेगा इनको परखो, इनकी हैसियत क्या है, ये तो मेरे आका पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है कि उनकी कसौटी पर इन लोगों को परख के देखो, देखा जाए, ये तो दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि किन के हैं और किन के हो चुके हैं, ये मुल्ला को नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा खुदा के लिए अगर तुम्हें इस्लाम से मोहब्बत है ये काम क्यों नहीं करते? जो चंद मुसलमान रह गए हैं उनको ही गैर मुस्लिम बनाकर इस्लाम को पाक करना तुमने, जो गैर मुस्लिम इस्लाम में भर गए हैं अपने अमल के जरिए गैर मुस्लिम, उनकी इस्लाह की तरफ तुम्हें कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप ही का काम है, आप वो उलू बकियत हैं जो महदूद चंद हैं उम्मत मोहम्मदिया, यानी उस उम्मत की तरफ के मुकाबले पर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब हो रही है, हैं चंद, लेकिन आपको खुदा ने यह अकल दी है, आपका यह काम है कि तमाम दुनिया के मुआशरे को बदियों से पाक करने के लिए ऐलान जंग करें, ये जहाद शुरू करें, हर जगह अपने दफ्तर के माहौल में, अपनी दुकान के कारोबार के माहौल में, अपने तालीमी माहौल में, अपने दोस्तों के ताल्लुकात के माहौल में, जहां भी आप जाएं वहां बुराइयों के खिलाफ जहाद शुरू कर दें। और हर कौम की मखसूस बुराइयां हैं, पाकिस्तान की अपनी बुराइयां हैं, हिंदुस्तान की अपनी हैं और इंग्लिस्तान की अपनी है, और जरूरी नहीं कि हिंदू पाकिस्तान के मुआशरे चूंकि मिलते हैं इनकी बुराइयां भी एक जैसी हों, एक लतीफा है लेकिन उसमें बुराइयों का फर्क करके दिखाया गया है। कहते हैं कि एक कुत्ता पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान जा रहा था और एक कुत्ता हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ रहा था। जो हिंदुस्तान से आ रहा था वो हड्डियों का ढांचा बना हुआ, गरीब भूखा, वो फाकों का शिकार, और जो पाकिस्तान से जा रहा था बड़ा मुस्टंडा, मोटा, ताजा, अच्छी खुराक से पला हुआ कुत्ता था। तो उसने जो हिंदुस्तान वाले कुत्ते से पाकिस्तानी कुत्ते ने पूछा कि तुम बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा भूखे मर गए और क्या, नजर नहीं आ रहा तुम, मेरी शक्ल देखो, मेरी सूरत देखो, फाकों का शिकार हूं। कहा मेरी बात तो काबिले फहम है। उसने फिर कहा तुम बताओ तुम्हें क्या सूझी है, तुम क्यों हिंदुस्तान जा रहे हो? उसने कहा बात यह है कि पाकिस्तान में रोटी तो बहुत मिलती है मगर भौंकने नहीं देते, आजादी जमीर ही नहीं। तो देख लें हम साया मुल्क हैं, एक ही किस्म का पस मंजर है, यहां एक बुराई है वहां दूसरी बुराई है, वहां और किस्म का जहाद है यहां और किस्म का जहाद है, लेकिन बुनियादी तौर पर जहाद अल्लाह की खातिर होना चाहिए, खुदा की खातिर दुनिया के मुआशरों को कमजोरियों और बुराइयों से पाक करने के लिए आपको मामूर फरमाया गया है, आप इस पर कायम हो जाएं। खुदा आपकी नस्लों की हिफाजत फरमाएगा, आइंदा नस्लों की हिफाजत फरमाएगा, आपका फैज इस सदी को आखिरी किनारे तक पहुंचेगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ